का था, रूह वही रूप नया।
अगली रहस्यमयी कहानी खौफनाक इमारत आप सुनने जा रहे हैं, और इस कहानी को लिखा है इब्ने सफी ने। आइए सुनते हैं कहानी का पहला भाग। सूट पहन लेने के बाद इमरान आईने के सामने लचक लचक कर टाई बांधने की कोशिश कर रहा था। ओहो, फिर वही छोटी बड़ी। अरे मैं कहता हूं टाइयां ही गलत आने लगी हैं, वो बड़बड़ाता रहा। लाहौल विला कुवत, जा नहीं बांधता। ये कहकर उसने झटका मारा तो रेशमी टाई की गांठ फिसलती हुई न सिर्फ गर्दन से जा लगी, बल्कि इतनी दंग हो गई कि उसका चेहरा सुर्ख हो गया और आंखें उबल पड़ी।
अरे सुलेमान, अरे मरा, बचाओ।
उसके हलक से घुटी घुटी सी आवाजें निकलने लगी और वो फेफड़ों पर पूरा जोर लगाकर चीखा। एक नौकर दौड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। पहले तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया क्यों इमरान सीधा खड़ा हुआ दोनों हाथों से अपनी टांगे पीट रहा है।
अरे क्या हुआ सरकार,
नौकर भर्राई हुई आवाज में बोला।
सरकार के बच्चे, मैं मर रहा हूँ।
अरे लेकिन मगर,
अरे लेकिन मगर, अबे ढीली कर, ढीली कर।
अरे क्या ढीली करूं, नौकर ने हैरान होकर कहा।
अरे अपने बाप के कफन की डोरी जल्दी कर, अरे मरा।
तो ठीक से बताते क्यों नहीं सरकार, नौकर भी झुंझला गया।
अच्छा बे, मैं गलत बता रहा हूँ, मैं यानी इमरान एमएससी पीएचडी गलत बता रहा हूँ। अरे कम्बो, इसे उर्दू में इस्तियारा कहते हैं और अंग्रेजी में मेटाफर कहते हैं। अरे मैं गलत कह रहा हूँ तो बाकायदा बहस कर, मरने से पहले यही सही है।
नौकर ने गौर से देखा तो उसकी नजर टाई पर पड़ी, जिसकी गांठ बुरी तरह फंसी हुई थी और नसें उभरी हुई थी। ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, दिन में कई बार उसे इस किस्म की हिमाकतों का सामना करना पड़ता था। उसने इमरान के गले की टाई खोली।
अगर मैं गलत कह रहा था तो अब बात तेरी समझ में कैसे आ गई,
इमरान गरज कर बोला। गलती हुई साहब। फिर वही कहता है, किससे गलती हुई? मुझसे साहब, मुझसे। तो साबित करो कि तुमसे गलती हुई। इमरान एक सोफे पर गिरकर घूरता हुआ बोला। नौकर सिर खुजलाने लगा।
अरे जुए हैं क्या तुम्हारे सर में,
इमरान ने डांट कर पूछा।
नहीं तो फिर खुजा क्यों रहे हो?
यूं ही।
जाहिल गंवार, खामखा बेतुकी हरकतें करके अपनी एनर्जी बर्बाद करते हो,
नौकर खामोश रहा। यंग की साइकोलॉजी पढ़ी है तुमने, इमरान ने पूछा। नौकर ने नहीं में सिर हिला दिया।
यंग के हिज्जे जानते हो?
नहीं साहब, नौकर उकता कर बोला। अच्छा याद कर लो, JUNG, यंग। बहुत ही जाहिल इसे जंग पढ़ते हैं, और कुछ जोंग, जिन्हें काबिलियत का हैजा हो जाता है वो जोंग पढ़ने और लिखने लग जाते हैं। फ्रांसीसी में जे ज की आवाज करता है, मगर यंग फ्रांसीसी नहीं था।
शाम को मुर्गा खाइएगा या तीतर,
नौकर ने पूछा। आधा तीतर आधा बटेर, चलो, इमरान झल्ला कर बोला। हाँ तो मैं अभी कह रहा था, वो खामोश होकर सोचने लगा।
आप कह रहे थे कि मसाला इतना भुना जाए कि सुर्ख हो जाए,
नौकर संजीदगी से बोला। हाँ, और हमेशा नरम आंच पे भूना करो, कड़छी को इस तरह देगची में न हिलाओ कि खनक पैदा हो और पड़ोसियों की राल टपकने लगे। वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहा था?
आप मेरे लिए एक शलवार कमीज का कपड़ा खरीदने जा रहे थे, 20,000 का लग था और कमीज के लिए बोस्की।
गुड गुड गुड, तुम बहुत ही काबिल और नमक हलाल नौकर हो, अगर तुम मुझे याद न दिलाते तो मैं तो भूल ही जाता।
मैं टाई बांध दूं सरकार,
नौकर ने बड़े प्यार से कहा।
हाँ बांध दो बांध दो,
नौकर टाई बांधते वक्त बड़बड़ाता जा रहा था।
20,000 का लट्ठा और कमीज के लिए बोस्की, कहिए तो लिख दूं।
बहुत अच्छा रहेगा, इमरान ने कहा। टाई बांध चुकने के बाद नौकर ने कागज के एक टुकड़े पर पेंसिल से घसीट कर उसकी तरफ बढ़ा दिया।
यूं नहीं,
इसे यहाँ पिन कर दो। इमरान अपने सीने की तरफ इशारा करके संजीदगी से बोला। नौकर ने एक पिन की मदद से कागज उसके सीने पर लगा दिया।
अब याद रहेगा,
इमरान ने कहा और कमरे से निकल गया। राहदारी तय करके वो ड्राइंग रूम में पहुंचा। यहाँ तीन लड़कियां बैठी हुई थी।
वाह इमरान भाई वाह, खूब इंतजार करवाया। कपड़े पहनने में इतनी देर लगाते हैं क्या?
इनमें से एक बोली।
ओह तो क्या आप लोग मेरा इंतजार कर रही थी?
क्यों,
क्या आपने एक घंटा पहले पिक्चर चलने का वादा नहीं किया था?
पिक्चर चलने का? मुझे तो याद नहीं, मैं तो सुलेमान के लिए,
इमरान अपने सीने की तरफ इशारा करके बोला।
ये क्या? एक लड़की करीब आकर आगे की तरफ झुकती हुई बोली। 20,000 का लट्ठा और बोस्की,
ये क्या है, इसका मतलब? फिर वो बेतहाशा हंसने लगी। इमरान की बहन सुरैया ने भी उठकर देखा, लेकिन तीसरी बैठी रही। वो शायद सुरैया की कोई नई सहेली थी।
ये क्या है, सुरैया ने पूछा।
सुलेमान के लिए शलवार कमीज का कपड़ा लेने जा रहा हूँ।
लेकिन हमसे आपने फिर वादा क्यों किया था, वो बिगड़ कर बोली।
अरे बड़ी मुसीबत है,
गर्दन झटकाकर इमरान ने कहा। तुम्हें सच्चा समझूं या सुलेमान को?
उसी कमीने को सच्चा समझिए, मैं होती ही कौन हूँ,
सुरैया ने कहा। फिर अपनी सहेलियों की तरफ मुड़कर बोली, चलो अकेले ही चलते हैं।
आप साथ गए भी तो बड़ी शर्मिंदगी ही होगी, कर बैठेंगे कोई हिमाकत।
जरा देखिए तो आप लोग, देखिए,
इमरान रोनी सूरत बनाकर दर्द भरी आवाज में बोला।
ये मेरी छोटी बहन है, मुझे अहमक समझती है। सुरैया मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा, किसी भी वक्त, जब भी टाई गलत बंध गई। और बेचारे सुलेमान को तो कुछ ना कहो, वो मेरा मोहसिन है, मुझ पर एहसान करने वाला है, उसने अभी अभी मेरी जान बचाई है।
क्या हुआ था,
सुरैया की सहेली जमीला ने घबराई हुई आवाज में पूछा।
अरे टाई गलत बंध गई थी,
इमरान इंतहाई संजीदगी से बोला। जमीला हंसने लगी, लेकिन सुरैया जली भुनी बैठी रही। उसकी नई सहेली हैरत से उस संजीदा अहमक को घूर रही थी।
तुम कहती हो मैं पिक्चर चलने को तैयार हूँ, लेकिन सुनो, वापसी पर मुझे याद दिलाना कि मेरे सीने पर एक कागज पिन किया हुआ है, इमरान ने कहा।
तो ये क्या इसी तरह लगा रहेगा, जमीला ने पूछा।
और क्या, तो मैं हरगिज नहीं जाऊंगी,
सुरैया ने कहा।
नहीं इमरान भाई के बगैर मजा नहीं आएगा, जमीला ने कहा।
अरे जियो, मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें सुरैया से बदल लूं।
काश तुम मेरी बहन होती, ये नकचढ़ी सुरैया मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती,
इमरान खुश होकर बोला।
अरे आप खुद नकचढ़े, आप मुझे कब अच्छे लगते हैं,
सुरैया बिगड़ कर बोली।
देख रही हो
ये है मेरी छोटी बहन।
अच्छा मैं बताऊं, आप ये कागज निकाल कर जेब में रख लीजिए, मैं याद दिला दूंगी, जमीला संजीदगी से बोली।
और अगर भूल गई तो?
वैसे तो कोई राहगीर ही मुझे देखकर मुझे याद दिला देगा। अरे मैं वादा करती हूँ, इमरान ने कागज निकाल कर जेब में रख लिया। सुरैया कुछ खिंची खिंची सी नजर आने लगी। जैसे ही वे बाहर निकले, एक मोटरसाइकिल पोर्टिको में आकर रुकी, जिस पर एक सलीकेदार और भारी भरकम आदमी बैठा हुआ था।
हेलो फयाज, इमरान दोनों हाथ बढ़ाकर चीखा।
हेलो इमरान मालाड, तुम कहीं जा रहे हो,
मोटरसाइकिल सवार बोला। फिर लड़कियों की तरफ देखकर कहने लगा,
ओह माफ कीजिएगा, लेकिन थोड़ा जरूरी काम है,
इमरान जल्दी करो।
इमरान उछलकर कैरियर पर बैठ गया और मोटरसाइकिल फर्राटे भरती हुई फाटक से गुजर गई।
देखा तुमने,
सुरैया अपना निचला होंठ चबाकर बोली।
ये कौन था,
जमीला ने पूछा।
इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का सुपरिटेंडेंट फयाज।
मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आ सकी कि उसे भाईजान जैसे खपती आदमी में क्या दिलचस्पी हो सकती है।
अक्सर उन्हें अपने साथ ले जाया करता है।
अरे इमरान भाई बड़े दिलचस्प आदमी हैं
भाई, कम से कम मुझे तो उनकी मौजूदगी में बड़ा मजा आता है,
जमीला ने कहा।
एक पागल दूसरे पागल को अक्लमंद ही समझता है,
सुरैया मुंह बिगाड़ कर बोली।
मगर
मुझे तो वो पागल मालूम नहीं होते, सुरैया की नई सहेली ने कहा। और उसने करीब करीब ठीक ही बात कही थी। इमरान सूरत से खपती नहीं लगता था, खूबसूरत और दिलकश नौजवान था। उम्र 27 के लगभग रही होगी। सुघड़ और सफाई पसंद था, तंदुरुस्ती अच्छी और जिस्म कसरती था। अपने शहर की यूनिवर्सिटी से एमएससी की डिग्री लेकर इंग्लैंड चला गया था और वहां से साइंस में डॉक्टरेट लेकर वापस आया था। उसका बाप रहमान गुप्तचर विभाग में डायरेक्टर जनरल था। इंग्लैंड से वापसी पर उसके बाप ने कोशिश की थी कि उसे कोई अच्छा सा ओहदा दिला दे, लेकिन इमरान ने परवाह न की थी। कभी वो कहता था कि मैं साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की तिजारत करूंगा, कभी कहता था कि अपना इंस्टीट्यूट कायम करके साइंस की खिदमत करूंगा। बहरहाल कभी कुछ और कभी कुछ, पूरा घर उससे परेशान था। इंग्लैंड से वापसी के बाद तो अच्छा खासा अहमक हो गया था, इतना अहमक कि घर के नौकर तक उसे उल्लू बनाया करते थे। उसे अच्छी तरह लूटते, उसकी जेब से 10-10 रुपए के नोट गायब कर देते और उसे पता तक न चलता। बाप तो उसकी सूरत तक नहीं देखना चाहता था। सिर्फ माँ ऐसी थी जिसकी बदौलत वो उस कोठी में रहता था, वरना कभी का निकाल दिया गया होता। इकलौता लड़का होने के बावजूद रहमान साहब उससे परेशान आ गए थे। पागल वो उसी वक्त नहीं मालूम होते जब खामोश हों। 2-4 घंटे भी इन हजरत के साथ रहना पड़े तो पता चले। सुरैया बोली, क्यों, क्या काटने को दौड़ते हैं? जमीला ने मुस्कुरा कर कहा, अगर उनमें इसी तरह दिलचस्पी लेती रहीं, तो किसी दिन मालूम हो जाएगा। सुरैया मुंह सिकोड़ कर बोली। कैप्टन फयाज की मोटरसाइकिल फर्राटे से भाग रही थी और इमरान कैरियर पर बैठा बड़बड़ाता जा रहा था। शलवार का लट्ठा बोस्की की कमीज, शलवार का लट्ठा, शलवार का बोस्का, बोस्का का लट्ठा, लट्ठी क्या था, अरे क्या था, लाहौल विला कुबत, भूल गया, रुको, अरे यार रुको यार, शायद फयाज ने मोटरसाइकिल रोक दी। भूल गया, इमरान बोला। अरे क्या भूल गए, अरे कुछ गलती हो गई। हाँ क्या गलती हो गई यार, कम से कम मुझे तो उल्लू ना बनाया करो, फयाज झुंझला कर बोला। शायद मैं गलत बैठा हूँ, इमरान कैरियर से उतरता हुआ बोला। अरे जल्दी है यार, फयाज ने गर्दन झटक कर कहा। इमरान उसकी पीठ से पीठ मिलाए दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गया। अब अरे ये क्या, फयाज ने हैरत से कहा। बस चलो अब ठीक है। खुदा की कसम तंग कर मारते हो यार, फयाज उकता कर बोला। कौन सी मुसीबत आ गई, इमरान ने झुंझला कर कहा। अरे मुझे भी तमाशा बनाओगे क्या, सीधे बैठो ना यार। तो मैं क्या सर के बल बैठा हूँ? अरे मान जाओ प्यारे, लोग हंसेंगे हम पर, फयाज खुशामद के लहजे में बोला। ये तो बड़ी अच्छी बात है, अरे मुंह के बल गिरोगे सड़क पर। अगर तकदीर में यही है तो बंदा बेबस और लाचार, इमरान ने दरवेशों के अंदाज में कहा। खुदा समझे तुमसे यार, फयाज ने दांत पीस कर मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। उसका मुंह पश्चिम की तरफ था और इमरान का पूरब की तरफ, और इमरान इस तरह आगे की तरफ झुक गया जैसे वो खुद ही मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहा हो। राहगीर उन्हें देख देख कर हंस रहे थे। देखा, याद आ गया ना, इमरान चहक कर बोला। शलवार का लट्ठा और कमीज की बोस्की, मैं पहले ही कह रहा था कि गलती हो गई है। इमरान तुम मुझे अहमक समझते हो क्या, कम से कम मेरे सामने तो इस तरह खपतीपन से बाज आया करो, फयाज ने झुंझला कर कहा। अरे तुम होगे खपती, इमरान बुरा मान गया। आखिर इस ढोंग से क्या फायदा, ढोंग, अरे कमाल कर दिया, ओफो। इस लफ्ज ढोंग पर मुझे एक बात याद आई है जिसे अब से 1 साल पहले याद आना चाहिए था। फयाज कुछ ना बोला, मोटरसाइकिल हवा से बातें करती रही। हैं? इमरान थोड़ी देर बाद बोला, ये मोटरसाइकिल पीछे की तरफ क्यों भाग रही है, अरे इसका हैंडल क्या हुआ? फिर उसने बेतहाशा चीखना शुरू कर दिया, हटो बच्चे, मैं पीछे की तरफ नहीं देख सकता। फयाज ने मोटरसाइकिल रोक दी और झेपते हुए अंदाज में राहगीरों की तरफ देखने लगा। शुक्र है खुदा का कि खुद ब खुद रुक गई, इमरान उतरता हुआ बड़बड़ाया और फिर जल्दी से बोला, अरे लाहौल विला कुव्वत, इसका हैंडल पीछे है, अब मोटरसाइकिलें भी उल्टी बनने लगी हैं। अरे क्या मतलब है तुम्हारा, क्यों तंग कर रहे हो, फयाज ने बेबसी से कहा। तंग तुम कर रहे हो या मैं, हाँ
उल्टी मोटरसाइकिल लिए फिरते हो? अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो? चलो बैठो यार, फयाज उसे खींचता हुआ बोला। मोटरसाइकिल फिर चल पड़ी। अब तो ठीक चल रही है, इमरान बड़बड़ाया। मोटरसाइकिल शहर से निकलकर वीराने की तरफ जा रही थी और इमरान ने अभी तक फयाज से ये भी पूछने की जहमत गवारा नहीं की थी कि वो उसे कहां ले जा रहा है। आज मुझे फिर तुम्हारी मदद की जरूरत महसूस हुई है, फयाज बोला। लेकिन आज मैं बिल्कुल गरीब हूँ, इमरान ने कहा। अच्छा, तो क्या मैं तुमसे उधार मांगने जा रहा था? पता नहीं, मैं तो यही समझ रहा था। अरे बाप रे बाप, फिर भूल गया, लठमार का पजामा और कमीज, ओ लाहौल विला कुवत, बोस्का बोस्की, ओ प्लीज शट अप इमरान, यू फूल, फयाज झुंझला उठा। इमरान, कैप्टन फयाज ने ठंडी सांस लेकर फिर उससे मुखातिब किया। तुम आखिर दूसरों को बेवकूफ क्यों समझते हो? क्योंकि अरे बाप रे बाप, ये झटके जरा यार चिकनी जमीन पर चलाओ। मैं कहता हूं कि अब ये सारी हिमाकतें खत्म करके कोई ढंग का काम करो। ढंग? लो यार, इस ढंग पर भी कोई बात याद आने की कोशिश कर रही है। अरे जहन्नुम में जाओ, फयाज झल्ला कर बोला। अच्छा ठीक है, इमरान ने बड़ी आज्ञाकारिता से गर्दन हिलाई। मोटरसाइकिल एक लंबी चौड़ी इमारत के सामने रुक गई, जिसके फाटक पर 3-4 वर्दीधारी कांस्टेबल नजर आ रहे थे। अरे अब उतरो भी, फयाज ने कहा। ओह मैं समझा शायद अब तुम मुझे हैंडल पर बिठाओगे, इमरान उतरता हुआ बोला। वे उस वक्त एक देहाती इलाके में खड़े थे जो शहर से ज्यादा दूर न था। यहाँ बस यही एक इमारत इतनी बड़ी थी, वरना इस बस्ती में मामूली किस्म के कच्चे पक्के मकान थे। इस इमारत की बनावट पुराने ढंग की थी। चारों तरफ सुर्ख रंग की लाखौरी ईंटों की ऊंची ऊंची दीवारें थीं और सामने एक बहुत बड़ा फाटक था जो गालिबन सदर दरवाजे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। कैप्टन फयाज इमरान का हाथ पकड़े हुए इमारत में दाखिल हो गया। अब भी इमरान ने उससे ये नहीं पूछा कि उसे कहां और क्यों लाया है। दोनों एक बड़े दालान से गुजरते हुए कमरे में आए। अचानक इमरान ने अपनी आंखों पर दोनों हाथ रख लिए और मुंह फेर कर खड़ा हो गया। उसने एक लाश देख ली थी जो फर्श पर औंधी पड़ी थी और जिसके इर्द गिर्द खून फैला हुआ था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो कांपती हुई आवाज में बड़बड़ा रहा था। खुदा उसके रिश्तेदारों पर रहमत करे और उसे सब्र की तौफीक अता फरमाए। फो, मैं तुम्हें दुआएं खैर करने के लिए यहां नहीं लाया हूं, फयाज झुंझला गया। कफन दफन के लिए चंदा वहां भी तो मांग सकते थे, आखिर इतने दूर क्यों घसीट कर लाए हो? यार इमरान, खुदा के लिए बोर ना करो, मैं तुम्हें अपना एक बेहतरीन दोस्त समझता हूँ, फयाज ने कहा। मैं भी यही समझता हूँ, मगर प्यारे 5 रुपए से ज्यादा ना दे सकूंगा। अभी मुझे लट्ठी का बोस्का खरीदना है। क्या लट्ठी? लट्ठी? लो यार, फिर भूल गया, अरे क्या मुसीबत है। फयाज चंद लम्हे खड़ा उसे घूरता रहा और फिर बोला, ये इमारत पिछले 5 वर्षों से बंद रही है, क्या ऐसी हालत में यहाँ एक लाश की मौजूदगी हैरत अंगेज नहीं है? बिल्कुल नहीं, अगर ये लाश किसी अमरूद के दरख्त पर पाई जाती तो मैं उसे अजूबा मान लेता, इमरान सिर हिलाकर बोला। यार थोड़ी देर के लिए तो संजीदा हो जाओ। अरे मैं तो शुरू से ही रंजीदा रहा हूं। अरे रंजीदा नहीं, संजीदा, फयाज ने झुंझला कर कहा। इमरान खामोशी से लाश की तरफ देख रहा था, वो आहिस्ता से बड़बड़ाया। फयाज उसे मूड में आता देखकर कुछ निश्चिंत सा नजर आने लगा। अरे पहले पूरी बात तो सुन लो, फयाज ने उसे मुखातिब किया। ठहरो, इमरान झुकता हुआ बोला। वो थोड़ी देर तक जख्मों को गौर से देखता रहा, फिर सिर उठाकर बोला, पूरी बात सुनाने से पहले ये बताओ कि इस लाश के बारे में तुम क्या बता सकते हो? आज दिन में 12 बजे ये देखी गई थी, फयाज ने कहा। मैं ज्यादा अकलमंदी का जवाब नहीं चाहता, इमरान नाक सिकोड़ कर बोला। मैं ये जानता हूं कि किसी ने इस पर 3 वार किए हैं। अच्छा और कुछ? इमरान उसे सवालिया नजरों से देख रहा था।
और क्या, फयाज बोला।
मगर शेख चिल्ली दोयम यानी अली इमरान एमएससी पीएचडी का ख्याल कुछ और है।
क्या?
सुनकर मुझे उल्लू सही अहमक बटा दो समझने लगोगे। अरे यार कुछ बताओ भी तो सही। अच्छा सुनो, कातिल ने पहला वार किया, फिर पहले जख्म से 5-5 इंच का फासला नापकर दूसरा और तीसरा वार किया, और इस बात का खास ख्याल रखा कि जख्म बिल्कुल सीध में रहे, न एक सूत इधर न एक सूत उधर।
क्या बकते हो, फयाज बड़बड़ाया।
नाप कर देख लो मेरी जान, अगर गलत निकले तो मेरा कलम सर पर कर देना।
मैं लगता है गलत बोल गया, मेरे कलम पे सर रख देना।
इमरान ने कहा और इधर उधर देखने लगा। उसने एक तरफ पड़ा हुआ एक तिनका उठाया और फिर झुक कर जख्मों के बीच का फासला नापने लगा। फयाज उसे हैरत से देख रहा था।
लो, इमरान ने उसे तिनका पकड़ाते हुए कहा, अगर ये तिनका 5 इंच का ना निकले तो किसी की दाढ़ी तलाश कर लेना।
मगर इसका मतलब, फयाज कुछ सोचता हुआ बोला, इसका मतलब ये कि कातिल और मकतूल दरअसल आशिक और माशूक थे।
इमरान प्यारे, जरा संजीदगी से।
अरे ये तिनका बताता है कि यही बात है, और उर्दू के पुराने शायरों का भी यही ख्याल है।
अरे किसी का भी दीवान उठाकर देख लो, 2-4 शेर इस किस्म के जरूर मिल जाएंगे जिनसे मेरे ख्याल की ताईद हो जाएगी।
अच्छा चलो एक शेर ही सुन लो। मोच आए ना कलाई में कहीं, मोच आए ना कलाई में कहीं, सख्त जां हम भी बहुत हैं प्यारे।
यार बकवास मत करो, अगर मेरी मदद नहीं करना चाहते तो साफ साफ कह दो ना, फयाज बिगड़ कर बोला।
फासला तुमने नाप लिया, अब तुम ही बताओ कि क्या बात हो सकती है, इमरान ने कहा। फयाज कुछ ना बोला।
अरे जरा सोचो तो,
एक आशिक ही उर्दू शायरी के मुताबिक अपने महबूब को इस बात की इजाजत दे सकता है कि वो जिस तरह चाहे उसे कत्ल करे, तीमा बनाकर रख दे या नाप नाप कर सलीके से जख्म दे। ये जख्म बदहवासी का नतीजा भी नहीं है, लाश की हालत भी ये नहीं बताती कि मरने से पहले मकतूल को किसी से जद्दोजहद करनी पड़ी हो। बस ऐसा मालूम होता है जैसे चुपचाप लेट कर उसने कहा, जो मिजाजे यार में आए। पुरानी शायरी और हकीकत में क्या लगाव है, फयाज ने पूछा।
पता नहीं,
इमरान सोचने वाले अंदाज में सिर हिलाकर बोला। अब वैसे अब तुम पूरी गजल सुना सकते हो, मक्ता में अर्ज कर चुका हूं। फयाज थोड़ी देर खामोश रहा और फिर बोला, ये इमारत तकरीबन 5 साल से खाली रही है, वैसे हर जुमे रात को सिर्फ चंद घंटों के लिए उसे खोला जाता है।
क्यों?
यहाँ दरअसल एक कब्र है जिसके बारे में ये मशहूर है कि वो किसी शहीद की है, चुनांचे हर जुमे रात को एक शख्स उसे खोलकर कब्र की साफ सफाई करता है।
चढ़ावे वगैरह तो होते ही होंगे, इमरान ने पूछा।
नहीं ऐसी कोई बात नहीं, जिन लोगों का ये मकान है वे शहर में रहते हैं और उनसे मेरे करीबी ताल्लुकात हैं। उन्होंने एक आदमी इसीलिए रख छोड़ा है कि वो हर जुमे रात को कब्र की देखभाल कर लिया करे, यहाँ लोगों की भीड़ नहीं होती। बहरहाल आज दोपहर को जब वो यहाँ आया तो उसने ये लाश देखी।
ताला बंद था, इमरान ने पूछा।
हाँ, और वो यकीन के साथ कह सकता है कि कुंजी एक लम्हे के लिए भी नहीं खोई, और फिर यहाँ इस किस्म के निशान भी नहीं मिल सके जिनके बिना पर कहा जा सकता कि कोई दीवार फलांग कर अंदर आया हो।
तो फिर क्या लाश आसमान से टपक गई?
बेहतर तो यह है कि तुम उसी शहीद की मदद तलब करो जिसकी ये कब्र, इमरान ने संजीदगी से कहा।
अरे यार तुम फिर बहकने लगे, फयाज बोला।
इस इमारत के मालिक कौन हैं और कैसे हैं, इमरान ने पूछा।
अब वही मेरे पड़ोस वाले जज साहब, फयाज बोला।
वही जज साहब, अरे अरे अरे, इमरान अपने सीने पर हाथ मारकर होंठ चाटने लगा।
हाँ वही यार, संजीदगी से खुदा के लिए,
तब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, इमरान मायूस अंदाज में सिर हिलाकर बोला।
हैं? क्यों?
क्योंकि तुमने मेरी मदद नहीं की।
मैंने?
मैं समझा नहीं, फयाज ने हैरत से पूछा।
खुद गर्ज हो ना, भला तुम मेरे काम क्यों करने लगे?
अरे बताओ तो ना, मैं वाकई नहीं समझा।
कब से कह रहा हूं कि अपने पड़ोसी जज साहब की लड़की से मेरी शादी करवा दो।
अरे बको मत, हर वक्त बेतुकी बातें।
अरे मैं संजीदगी से कह रहा हूँ, इमरान ने कहा। अगर संजीदगी से कह रहे हो तो तुम शायद अंधे हो। क्यों? उस लड़की की एक आंख नहीं है। अरे इसीलिए तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, वो मुझे और मेरे कुत्तों को एक नजर से देखेगी।
यार खुदा के लिए संजीदा हो जाओ, पहले तुम वादा करो।
अच्छा बाबा ठीक है, मैं उनसे कहूंगा।
बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ना सचमुच उस लड़की से कुछ हो गया है। अरे क्या कहते हैं उसे, अरे लो यार, ओफो भूल गया, हालांकि कुछ देर पहले ही उसी का तज़किरा किया था।
अरे चलो छोड़ो, काम की बातें करो यार।
नहीं नहीं नहीं, उसे याद ही आने दो, वरना मुझ पर हिस्टीरिया का दौरा पड़ जाएगा।
इश्क, फयाज मुंह बनाकर बोला।
अरे जियो, शाबाश शाबाश, इमरान ने उसकी पीठ ठोंकते हुए कहा।
खुदा तुम्हारी मादा को सलामत रखे।
अच्छा ये बताओ कि लाश की शिनाख्त हो गई या नहीं?
नहीं, ना तो वो इस इलाके का बाशिंदा है और ना जज साहब के खानदान वाले उससे वाकिफ हैं।
यानी किसी ने उसको नहीं पहचाना?
नहीं।
उसके पास कोई ऐसी चीज मिली जिससे कि उसकी शख्सियत पर रोशनी पड़ सके?
कोई नहीं।
मगर ठहरो, फयाज एक मेज की तरफ बढ़ता हुआ बोला। वापसी पर उसके हाथ में चमड़े का थैला था।
ये थैला हमें लाश के करीब पड़ा मिला था, फयाज ने कहा।
इमरान थैला उसके हाथ से लेकर अंदर की चीजों का मुआयना करने लगा।
किसी बढ़ई के औजार? अगर ये मकतूल ही के हैं तो वैसे उस शख्स की जाहिरी हालत अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन फिर भी ये बढ़ई मालूम नहीं होता, इमरान ने कहा।
क्यों?
इसके हाथ बड़े मुलायम हैं और हथेलियों में खुरदुरापन नहीं है। ये हाथ तो किसी मुसव्विर या रंगसाज के ही हो सकते हैं, इमरान बोला।
अभी तक तुमने कोई काम की बात नहीं बताई, फयाज ने कहा।
अरे एक अहमक आदमी से इससे ज्यादा की उम्मीद रखना अक्लमंदी नहीं है।
उसके जख्मों ने मुझे उलझन में डाल दिया है, फयाज ने कहा।
अगर तुमने मेरे जख्मों पर मरहम रखा तो मैं उन जख्मों को भी देख लूंगा।
क्या मतलब?
अरे जज साहब की लड़की, इमरान इस तरह बोला जैसे उसे कुछ याद आ गया हो।
अच्छा इस मकान की एक कुंजी जज साहब के पास जरूर होगी।
हाँ उनके पास भी है।
है या थी?
ये तो मैंने नहीं पूछा।
खैर फिर पूछ लेना। अब लाश को उठवाओ, पोस्टमार्टम के सिलसिले में जख्मों की गहराइयों का खास ख्याल रखा जाए।
क्यों?
अगर जख्मों की गहराइयां भी एक दूसरे के बराबर हुई तो समझ लेना कि यह शहीद मर्द साहब की हरकत है।
क्यों फिजूल बकवास कर रहे हो?
जो कह रहा हूं उस पर अमल करने का इरादा हो तो अली इमरान MSc PhD की खिदमात हासिल कर लेना, वरना वरना कोई बात नहीं।
अब क्या नहीं? जरा बताओ तो।
अरे यार वो वाला लफ्ज मैं भूल रहा हूँ,
जरूरत,
फयाज ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा।
अरे जीते रहो, वरना कोई जरूरत नहीं। हाँ
तुम्हारी हिदायत पर अमल किया जाएगा इमरान।
और कुछ?
और ये कि मैं पूरी इमारत देखना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। पूरी इमारत का चक्कर लगा लेने के बाद वे फिर से उसी कमरे में लौट आए।
हाँ भाई सुनो, जज साहब से जरा ये भी पूछ लेना कि उन्होंने सिर्फ इसी कमरे की हालत बदलने की कोशिश क्यों कर डाली, जबकि पूरी इमारत उसी पुराने ढंग पर रहने दी गई है। कहीं भी दीवार पर प्लास्टर नहीं दिखाई दिया, लेकिन यहाँ है।
पूछ लूंगा, और कुंजी के बारे में भी पूछ लेना।
और अगर वो महबूबा या चश्म मिल जाए तो उससे कहना कि तेरे नीम कश को कोई मेरे दिल से पूछे, शायद गालिब की महबूबा भी एक ही आंख रखती थी, क्योंकि तेरे नीमकश इकलौती आंख का ही हो सकता है।
तो इस वक्त कुछ और नहीं बताओगे, फयाज ने पूछा।
यार तुम बड़े एहसान फरोश हो।
फरोश? अरे शायद मैं वो लफ्ज भूल गया। क्या क्या लफ्ज है?
फरामोश।
जियो। हाँ
तुम बड़े एहसान फरामोश हो, इतनी देर से बकवास कर रहा हूँ और तुम कहते हो कि मैंने कुछ बताया ही नहीं।
किसकी है ये लाश? कैसे सुलझाएगा इमरान इस गुत्थी को? और क्या वो वाकई जज साहब की बेटी से शादी करना चाहता है?
इन सारे सवालों के जवाबों को जानने के लिए सुनते रहिए भाग दो।